الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله فرمان اخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور بنی نوع انسان کی فلاح اور کامرانی کا یہ علم بردار ہے۔ زندگی کے ہر سٹیپ میں، ہر واک آف لائف میں یہ ہماری بہترین انداز سے رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے زرعی اصولوں میں اخلاق کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو ہماری گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ آج جو ہمارا سلسلہ شعور، اس کا جو یہ ایپیسوڈ ہے، اس میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور اخلاقی پستی کی وجوہات۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں وہ ہیں مہروز مدنی۔ ماشاءاللہ، بڑا فیملر فیس ہے اور بڑے زبردست ایک اسپیکنگ انداز رکھتے ہیں، اور اپنی بات بڑے احسن انداز سے کنوے کرنا جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم ویلکم کرنا چاہیں گے مہروز بھائی کو۔ مہروز بھائی، پلیز ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں مہروز بھائی؟
رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔
مہروز بھائی، آج جس طرح ہمارا ٹاپک ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی پستی کے وجوہات،
ٹھیک،
جس طرح اخلاق اگر ہم دیکھوں تو یہ خلق کی جمع ہے، یہ عادت اور خصلت آپ کے اتوار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب عادات اور اتوار کی بات کی جاتی ہے، طور طریقے کی بات کی جاتی ہے، تو اس پہ کچھ پازیٹو بھی ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔
جی بالکل۔
تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز کچھ اس طرح سے ہو، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کے ایک انفارمیشن یو بلڈ بھی ہو کہ اخلاق کو ہم کن کن ایسپیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ کیا یہ صرف ہماری پرسنل زندگی کا حصہ ہے یا ہماری سوشل زندگی کا حصہ ہے، یا ہر اعتبار سے بیسیکلی اخلاق کا انٹرفیئر ہر واک آف لائف کے اندر ہے۔
اخلاق انسان کا حصہ ہے،
ماشاءاللہ۔
تو انسان جس جس ایسپیکٹ میں جائے گا وہاں وہاں اس کا اثر آئے گا، چاہے وہ آپ کی انڈیویجل لائف ہو، چاہے آپ کی سوشل لائف ہو، چاہے آپ کی فائنینشیل جو آپ کا کہہ لیں کہ لائف ہے یا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہر جگہ پہ نا اس کو اثر انداز ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آپ نے جیسے بات کی کہ یہ اخلاق پازیٹو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، اور دیکھیں جب سے انسان ہے نا، جب سے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس کی طبیعت، اس کی عادات، اس کے اتوار، جتنے ناظرین ہیں ان کی کوئی نہ کوئی عادت، ان کی کوئی نہ کوئی طبیعت ہوتی ہی ہے نا، اس کے بغیر تو انسان نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو وہ پازیٹو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی۔ اسلام کی ایک زبردست خوبصورتی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب اسلام تشریف لایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر دین اسلام کی خوش نما تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا، تو اس وقت بھی لوگ پازیٹو اور نیگیٹو چیزوں میں انوالو تھے، عادت و اتوار کے اعتبار سے۔ جیسے ایک بات آپ نے سنی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے بھی میں امید کرتا ہوں علم میں ہوگی، کہ عرب دنیا جو تھی، عرب لوگ جو تھے، مہمان نواز بہت تھے۔
جی،
تو یہ تو اچھا سائن،
اچھا سائن،
یہ تو ایک اخلاقی بات تھی۔
جی،
تو اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اچھائیاں اس معاشرے میں بھی بہرحال تھیں، تمام تر برائیوں کے باوجود اور تنزل کے باوجود۔ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ دین اسلام نے جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت، کتابوں پہ ایمان لانا، یہ اعتقادی معاملات جو تھے، فکری معاملات جو تھے، جہاں ان کی دعوت دی، وہیں دین اسلام نے انسانی عادات و اتوار کو بھی سنوارا۔ اور اس سنوارنے میں، اس تبدیلی میں، یہ جو ایک بڑا امپیکٹ آیا دین اسلام کی وجہ سے، اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلے سے اچھی چیزیں آ رہی تھیں ان کو کنٹینیو کیا۔
واہ!
ان کو یوں نہیں کیا کہ بھئی یہ پہلے سے آ رہی ہیں تو ہم تو نہیں لائق بات ہے، تو ان کو کنٹینیو کیا۔ اور اصل میں پہلے سے بھی یوں آ رہی تھی کہ اسلام جس دین کا، جس مذہب کا نام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا نا. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھلی اچھی چیزیں تھیں ان کو کنٹینیو کیا, اور جو ایسی چیزیں تھیں جن میں اصلاح کی گنجائش تھی کہ بھئی ترمیم ہونی چاہیے, کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, تو وہاں اس بات کو, اس عقیدے کو, چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے فکری ہو, اس کو تبدیل کرتے ہیں. میں اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. 9, 10 یا 10, 11 محرم کی روزے کی ہم نے ترغیب سنی, جب وہ روایت ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل یہود جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے ہیں. ایک بات تھی, اب یہ اخلاقی بات نہیں تھی, یہ تو عبادات کا معاملہ تھا, لیکن میں اصول عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس روزے کا پتہ چلا تو حالانکہ یہود کا طریقہ تھا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں, اور پھر اس میں ترمیم و اضافہ یہ کیا کہ ان سے مشابہت نہ ہو, اس وجہ سے اس سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا لیا جائے اس کے ساتھ. تو یہ دیکھیں آپ تبدیلی اور ترمیم کی, اور بعض رسوم, بعض عادات, بعض اعتقادات, بلکہ اکثر اعتقادات وہ تھے کہ جن کو دین اسلام نے اپنے نورانی قدموں تلے روند کر رکھ دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ آج دور جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں تلے ہیں. تو اس میں عادات بھی شامل ہیں, دیگر چیزیں بھی شامل ہیں. تو دین اسلام نے اخلاقیات کو آگے بڑھایا ہے, بلکہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو آپ کی بعثت کا ایک مقصد جو تھا وہ انسان کو انسان بنانا, بندے کو اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بنانا تھا. تو وہ دین اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھایا. اللہ کرے کہ آج کے دور میں جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ہم ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے بجائے دین اسلام کی روشن تعلیمات جو اس حوالے سے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں, تو زندگی کے جس شعبے میں ہم جائیں گے انشاءاللہ عزوجل کامیابی کے, کامرانی کے مزدے پائیں گے.
مدنی چینل کے ناظرین, کہیں خوبصورت بات مہروز بھائی نے بھی یہاں پر کوٹ کی کہ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے لگیں, اور اگر حقیقی معنوں میں اپنی ہسٹری, اپنے اسلاف اور اپنے جو ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹیز, ہولی پرسنالٹیز ہیں, ان کو اسٹڈی کرنے لگے, تو شاید ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ان ویلیوز اور ان ایگزامپلس کی ضرورت نہ پڑے جو بظاہر 21st century کے اندر دی جاتی ہے. مہروز بھائی, اس میں یہ دیکھا جائے کہ لائک بینگ اے مسلم, ایون ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا انوائرمنٹ, ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جب مورل اور ایتھکس, کیونکہ باقاعدہ ایتھکس تو اب یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر آپ سمجھ لیں ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے, اور اس پوری کتاب کے اندر, کیونکہ ہم نے بھی پڑھا, اس پوری کتاب کے اندر ڈیفینیٹلی ایگزامپلز دی جاتی ہے وہ غیر مسلموں کی دی جاتی ہیں, اور ایک کیونکہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. الحمدللہ داؤد سامی کا جو ایک دینی ماحول ہے, الحمدللہ میں نصیب اور رمضان کریم کے اعتکاف اور ایونٹس میں بھی شرکت کا سلسلہ رہا, تو کہیں نہ کہیں یہ ایک سوچ جو تھی اس کلاسز کے اندر بھی پینیٹریٹ کر رہی ہوتی تھی جب ہم ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ ہم ایتھکس پڑھ رہے ہیں, جبکہ اخلاقیات ابھی ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا کہ اسلام کے ذریعے اسلوب میں اخلاق کو سر فہرست رکھا گیا.
بالکل,
تو جب ایتھکس کی اتنی موٹی بک ہے اس میں اسلام کی کوئی ریفرنسز اور ایگزامپلز نہیں ہے, ایک اسلامی معاشرہ مہروز بھائی اور وہاں پر اتنی ساری ایگزامپلز اور اسٹوریز ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کو جب معاشرے کے اندر اس طرح سے عام کریں گے تو اس کا امپیکٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے.
بالکل یقینی بات ہے یہ, اور اس میں یوں ہے عبدالرزاق بھائی کے کچھ تو غیروں کی کار فرمائی ہے, کچھ ہمیں بھی جو ہے نا ڈوب بننے کا شوق تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام, قرآن, حدیث, صحابہ کرام, ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں گے آپ تو یہ با اخلاق نہیں تھے صرف, بلکہ اخلاق ان سے روشنی لیتا تھا. یہ اخلاق کے مینارہ نور تھے. اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا تو قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ بلندی اخلاق پر ہیں, آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. یہاں پہ علماء نے, مفسرین نے ایک بات بیان فرمائی کہ قرآن نے جو کہا لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی بلندی پر ہیں, تو اخلاق نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں.
خوبصورت.
اور مفسرین نے ایک اور بات کہی, ایک سوال بنتا ہے جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, جب اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جی اخلاق ہے کیا, کیونکہ ہم نے یہ تو بتا دیا, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جی انسان کی جو عادت و اطوار ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں, جو پازیٹیو ہیں وہ اچھی عادتیں کہلاتی ہیں, جو نیگیٹو ہیں وہ بری عادتیں کہلاتی ہیں. इसका फैसला कौन करेगा कि कौन सी आदत पॉजिटिव है और कौन सी आदत नेगेटिव है? आपने देखा होगा माशरे में बाज लोग होते हैं वो बड़ा कफन फाड़ कर बोल रहे होते हैं, जिसे आप बोले ना मुहावरे की जबान में, और उस पे वो बड़े इतराते हुए कहते हैं कि जी हम बड़े बोल्ड हैं, हम बड़े फेयर हैं
जी।
तो वो तो अपनी दानिश में जो काम कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, जबी तो वो इतने फखर के साथ कह रहे हैं कि जनाब अली हम तो बड़े बोल्ड हैं और हम ट्रूली टॉक करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि गलत है, तो अब इसका फैसला कौन करेगा कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी है? तो मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा और दीगर जगहों पे कुरान करीम में फइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम इसके तहत और दीगर जगहों पर भी एक बात बयान की, और वो बयान यही की कि अच्छी और बुरी आदत का फैसला कैसे होगा। तो उन्होंने फरमाया कि जिस आदत की हाजिरी बारगाह रिसालत में हुई है तो वो अच्छी है
सुभान अल्लाह,
और जो उस बारगाह से धुतकार दी गई है वो बुरी है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, जो उसवा है, वो अच्छा है, और जो आपकी बारगाह में नहीं आया, आपने उसे धुतकार दिया है, तो वो अच्छा नहीं है। सच बोलना अच्छा है क्योंकि रब का हुक्म है, नबी का तरीका है, तो दयानतदारी अहद को पूरा करना ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे शफकत करना, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों का सहारा बनना ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम की रोशन तालीमात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाकीजा सीरत इसको इंडोज करती है, तो ये अच्छा हो गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा और तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नों अदा की कसम। अच्छा, यहाँ पे जो मिस्रों में कहा गया तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, ये आयत मुबारका में अजीम कहा हुआ, इन्नका लअला खुल्किन अजीम, और फरमाया तेरी खिल्क को यानी आपकी सूरत को हक ने जमील किया, खूबसूरत बनाया। यानी इसको अगर यूं जाहिरी अल्फाज में एक जुमले में समूहे तो आप हुस्न सीरत और हुस्न सूरत के पैकर हैं। तो हम अगर इनके पीछे चलेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमें हुस्न सूरत भी मिलेगा और हुस्न सीरत भी मिलेगा, क्योंकि हुस्न सूरत भी वही अच्छा है जो दीन इस्लाम के रास्ते पर हो, वरना जो हुस्न है वो किस काम का।
इखलाक की जब हम बात करते हैं, और अभी अमीर अहलुसुन्नत की आली में इंशाल्लाह
आपने एक बात की थी, मैं चाहता हूँ उसको भी ऐड कर लूँ यहाँ पे। आपने फरमाया था यूनिवर्सिटीज में उसी से बात निकली थी हमारी, तो मैं एक बात ऐड करूँ कि अब्दुल रजाक भाई देखें, किताबे इल्म पढ़ना पढ़ाना ये यकीनन बहुत अच्छा काम है और दीन इस्लाम तो शुरू ही इकरा से होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की नहीं होती। आप भी अकेडमिक एजुकेशन हासिल की है, मैंने भी की है, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दुनियावी भी दीनी भी रहे हैं, लेकिन देखिए किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है
जी,
बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने वाले जो हैं वो उसके आमिल नजर नहीं आते बाजू का। तो इसमें बहुत बड़ा गैप जो होता है ना, वो अल्फाज जुमले बात गुफ्तगु तहरीर मुताला तो है, उनके पास रोल मॉडल नहीं है, वो नकल किसकी करें। तो एक बात तो बुनियादी ही कि कुरान ने कहा लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे पास जो उसने सीरत है ना वो भी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम उनकी पैरवी करो। और फिर आप देखेंगे कि उलमा सुलाहा औलिया सहाबा इनकी सीरत हर दौर में नमूना अमल रही है, तो आज भी पढ़ाने वाला पढ़ा तो रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर भी वो बात है? मैं गुस्से पे लेक्चर तो दे रहा हूं
जी,
लेकिन चार बंदे आके मुझे टीज करते हैं तो मैं बेकाबू हो जाता हूं
जी, जी जी।
मैं ये तो मजम्मत कर रहा हूं कि जी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, बुरी बातें नहीं करना चाहिए, फौजगोई नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब मैं आपे से बाहर हो रहा हूं या कोई आपे से बाहर हो रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही है। तो एज अ स्टूडेंट एक साइकी डेवलप होती है और वो ये होती है कि जी कहने की बातें अलग हैं और करने की बातें अलग हैं। तो जब एक पढ़ाने वाले का, एक किताब लिखने वाले का और खुद पढ़ने वाले का ये जहन होगा कि मैं अच्छी बातें इसलिए लिख रहा हूं या इसलिए पढ़ा रहा हूं या इसलिए पढ़ रहा हूं कि इससे मेरे अंदर और माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए, एक खुशबूदार लहर आए, खुशबूदार लपट आए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो इस कमी का आपने इजहार किया है वो दूर होती रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल इसकी कह सकते हैं कि माशरे के हर तबके, हर शोबे और हर गांव, देहात, शहर और मुल्कों में ये कोशिश कर रहा है।
मैं क्वेश्चन तो कुछ और करने वाला था लेकिन आपकी इस बात से एक चीज ख्याल यू बना कि यौम दावत इस्लामी 41 ईयर्स मदनी चैनल के नाज़रीन दावत इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं, इस 41 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, जब 40th एनिवर्सरी हमारे थी मतलब लास्ट ईयर, तो उस पर कुछ टेस्टिमोनियल्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला हो रहा था। आप जानते हैं कि हमारे एक प्रोफेशनल फोरम ऑफ दावत इस्लामी भी है, उसकी भी कुछ खिदमत का मौका मिला हुआ है, तो हमारे कुछ प्रोफेशनल्स गैदर थे और सबके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे। जब मेरी बारी आई और मुझसे क्वेश्चन किया गया कि दावत इस्लामी ने आपको क्या दिया, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन हमारा था बेसिकली, तो मेरा जवाब वहां पर यही था कि दावत इस्लामी ने मुझ में एहसास दीन को बेदार किया। क्योंकि मैं जब नजर डालता हूं कि हमारी स्कूल लाइफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं फिक्रे मुआश के लिए जब निकल जाना उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, तो जब इन तमाम तर सर्किल ऑफ लाइफ के हम नजर डालते हैं, इन तमाम रोड मैप पे नजर डालते हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट डेज मनाए इदारों के अंदर, डिफरेंट एक्टिविटीज में हमें इंगेज किया गया, वेलफेयर के नाम पर, सोशल के नाम पर, यूथ के नाम पर, फिलंथ्रोपिक के नाम पर, कहीं नहीं मिले तो हमें एग्जाम्पल जश्न मिलादुल नबी की नहीं मिली, कहीं एग्जाम्पल नहीं मिली तो रिलीजियस एक्टिविटीज की नहीं मिली कि कहीं फॉर एग्जाम्पल इनकरेज किया जा रहा हो कि आए हम फॉर एग्जाम्पल फला अयाम मनाते हैं या फला चीजों की तरफ इंकरेज करते हैं। ये जो एहसास था ये बेदार दावत इस्लामी, डेफिनेटली जब हम दावत इस्लामी की बात करते हैं तो जो पहली पिक्चर, जो पहली तस्वीर, जो पहला चेहरा सामने आता है वो किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुल्लाह अलिया का आता है। तो यकीनन अमीर अहले सुन्नत, चूंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो इस बात से रिलेटेड है कि अखलाक के अंदर गुफ्तगू की अहमियत कितनी है, कि जब हम अमीर अहले सुन्नत को देखते हैं तो आप जानते ही होंगे महरोज भाई बड़े मशहूर आलिम दीन, अल्लाह की रहमत फरमाए, उनके दर्जे बुलंद करे, हमजा अली कादरी साहब, तो वो फरमाते थे कि हमारी जिंदगियां गुजर गई तबलीग दीन और दर्स और तदरीस करते हुए, शायद मतलब उनकी आजी थी, उन्होंने फरमाया कि हम शायद किसी को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या टोपी भी नहीं पहना पाए, मतलब कि लाइक एक होता है कि वो इस्लामी हुलिया भी नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पे मदरसतुल मदीना के बच्चों को इमामत शरीफ पहना दिया, यंगस्टर्स को इमामत शरीफ पहना दिया, हिर मुबल्लिगीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, इसकी मिसाल, इसकी मिजाक अमीर अहले सुन्नत हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, इनका साया आतिफत सलामती के साथ हम पर कायम रहे। तो गुफ्तगू में, गुफ्तगू के आदाब, अभी किताब भी शाया माशाल्लाह होने वाली मकतबतुल मदीना से, इखलाक और गुफ्तगू, गुफ्तगू का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है इखलाक के ऊपर?
देखिये जबान खुलती है तो फिर सब कुछ पता चलता है
जी।
बाज़ोकात होता है लोग कह रहे होते हैं मेरी जबान बंद है ना
जी,
तो बंद रहने दो। अच्छा, उन्हें खुद को भी पता होता है खुलेगी तो क्या कयामत बरपा करेगी। यकीनी तौर पे जबान जो है इंसान की शख्सियत का आईनादार है, और जब ये खुलती है तो फिर पता चलता है ये फर्द जो है अखलाकियात के कितने पानी में खड़ा है, या बेचारा बारिश में खड़े होने के बावजूद भी सूखा है। आपने अमीर अहले सुन्नत की बात की, यौम दावत इस्लामी की भी बात की आपने। एक बात मैं छोटी सी अर्ज कर दूं, हर किसी का अपना ही सोचना होता है, फिर वक्त की भी कैफियत होती है। अल्लाह की रहमत से मेरे पास तो आज जो भी अच्छी चीज है तो वह अमीर अहले सुन्नत का सदका ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह लें या फैक्ट कह लें आप, दावत इस्लामी की तरक्की में और अमीर अहले सुन्नत की इस मकाम पे पहुंचने में, वो है कौल और फेल का यकसा होना।
वाह,
जो बात अभी पीछे कही थी उसी की बहुत आला मिसाल है ये कि अमीर अहले सुन्नत जो इरशाद फरमाते हैं वो उसके आमिल होते हैं, वो कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमने कितने ही लोगों को ऐसा देखा है जो बज़ाहिर पसंद नहीं करते थे अमीर अहले सुन्नत को, बल्कि हकीकतन पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने करीब से दावत इस्लामी को और अमीर अहले सुन्नत को देखा तो वो खुद दिल दे बैठे और वो खुद दावत इस्लामी वाले बन गए, दूसरों को दावत इस्लामी वाला बनाने वाले बन गए। आज आप देख लीजिए 41 ईयर्स अब्दुल रज़ाक भाई एक मूवमेंट के लिए, एक तहरीक के लिए, एक तंजीम के लिए ना कुछ भी नहीं होते। यूं तो इंसानी जिंदगी में तो 41 ईयर्स की 41 साल की बहुत वैल्यू है, वो मौत के बिल्कुल ही करीब हो जाता है कहा जाता है, लेकिन एक तहरीकी, एक मूवमेंट, एक जो ये मुनज़्ज़म तंजीम है उसके लिए 41 साल 41 ईयर्स कुछ भी नहीं होते। लेकिन आप देखिए दावत इस्लामी वो तहरीक है गोया के इस बच्चे ने बड़े जल्दी कदोकाट निकाला है और अल्लाह की रहमत से झंडे गाड़े हैं और दीन इस्लाम की बका, इसकी इशाअत और बिलखसूस नौजवान नस्ल को जैसे इसने अपने दायरे में लिया है, अपनी आगोश में लिया है, समेट लिया है, ये यकीनन हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम उस वक्त में जिंदा हैं जब दावत इस्लामी है, जब अमीर अहले सुन्नत की सांसें भी इसी फजा में चल रही हैं। अल्लाह पाक उनका साया दराज फरमाए और दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और मैं, आप इजाजत दें तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन को भी एक पैगाम दे दूं मौजू से रिलेटेड। आप में से बहुत सों को शिकायत भी होगी कि माशरे में अखलाकी इकदार जो है, अखलाकी कैफियात जो है वो कम होती जा रही हैं और इनको बढ़ना चाहिए, इनको फैलना चाहिए। तो अगर आप इस बात के शाइक हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुई या इसके करीब तशरीफ ले आइए। आप जहां कहीं भी हैं तो आपके करीब में फैजान मदीना है तो वहां तशरीफ लाइए, जुमेरात के दिन इज्तिमा होता है उसमें शिरकत कीजिए। और यकीनी तौर पर अब्दुल रज़ाक भाई जब इज्तिमा होता है, कोई गैदरिंग होती है दावत इस्लामी के रेफरेंस से, तो उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज के, मुख्तलिफ एज ग्रुप के और मुख्तलिफ तालीम के इवन ना खानदा अफराद भी आते हैं, लेकिन उनके अखलाक में आपको एक तब्दीली, एक इम्तियाज मिलेगा। तो ये अभी बात यही थी कि ये तो आखिरी बात होनी थी लेकिन ये इधर यूं बन गई कि एक लिंक बन रहा था। तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप दावत इस्लामी को जरा करीब से देखिए और अगर कोई और जरिया आपके पास करीब से देखने का नहीं है तो फिर मदनी चैनल देखते रहिए।
महरूज भाई, ये जो आपने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि ये तो हमने हर इवेंट नहीं बल्कि दावत इस्लामी के, तो दावत इस्लामी क्योंकि एक तरीके से कह लें कि अय्याम मनाने में बुजुर्गान दीन के, मैं तो कहूंगा कि ये ट्रेंड सेटर है क्योंकि इसने ही पायनियर भी है। आप यकीनन बिलाशुबा इसने ही हमें तरीका, आदाब, तरीके बताए। अच्छा, अब इसमें मैं जब देखता हूँ कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी गैदरिंग या महफिल अरेंज करते हैं, भले फैमिली गैदरिंग क्यों ना, 400-500 अफराद की शादी ब्याह की तकरीब की एग्जाम्पल ले लें, वहां पर भी खाने का जो वक्त होता है उसमें बदमजगी होती है। आप देखते हैं कि आजकल यहाँ पर एक सिलसिला है। फिर अगर सोशल मीडिया की तरफ नजर डालें या आम मौसम पे भी देखें लसानियत के ऊपर और इस तरह से कम्युनिटी बेस्ड एक बहुत ज्यादा एक ऐसी कह सकते हैं कि फ्लेम है, एक ऐसी कह सकते हैं एक फिजा कायम हुई हुई है कि लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते, लोग मिलना पसंद नहीं करते, लोग अगेंस्ट के बात करते हैं अपनी अगेंस्ट कम्युनिटी की। लेकिन जब आलमी मदीन मरकज फैजान मदीना, क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल यही है
जी,
रमजान करीम के एतिकाफ और इसके साथ साथ जो हमारे भाई रबी नूर शरीफ माशाल्लाह उसकी आमद आमद है, 12 दिन मदी मुजाकरे होंगे, डिफरेंट शहरों से यहाँ पर आशिकान रसूल जमा होंगे, ये इतने मुनज़्ज़म अंदाज से, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं जो इखलाक की कह सकते हैं कि तबलीग और तरबियत का जो एक अंदाज है उसे आप दावत इस्लामी के माहौल में कैसा देखते हैं। और ये मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मैंने एक क्वेश्चन ये आपसे इसलिए किया कि इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे, नाजरीन अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
अल्लाह पर अखलाक की बात तो ये है कि देखें दावत इस्लामी नाम है अमीर अहले सुन्नत का,
बेशक
है ना, तो अमीर अहले सुन्नत की सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, उससे अंदाजा लगाएं कि दावत इस्लामी में अखलाक को कैसे प्रमोट किया जाता है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह पाक मेरे पीर व मुर्शिद को सलामत रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए, लेकिन आप फरमाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे किसी ने कत्ल कर दिया, किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया, हो वो ईमान वाला, तो मैंने उसे अपने हक माफ किए।
अल्लाह अकबर।
अब ये ना मैं समझता हूँ कि इस दौर में अखलाक की आला तरीन मिसाल है और अमीर अहले सुन्नत किसी सूरत भी किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई को मना फरमाती है। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, नहीं तो इसके दसियों बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों जो है इसकी मिसालें भी दी जा सकती हैं, बात भी की जा सकती है, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा एक बार फिर के मेरे कहने को ना देखें बल्कि खुद तशरीफ ले आए। एक फील जो होती है ना, देखिए अब्दुल रज़ाक भाई आप हैं, मैं हूं या मदनी चैनल के वो नाजरीन हैं जो मुख्तलिफ जगहों से होकर आए, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली दावत इस्लामी हैं, बल्कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से थे, हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन जो थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी, हमारा बिजनेस, हमारी वे ऑफ इनकम जो था वो बड़ा डिफरेंट था, तो हमें किसी न किसी तरीके से दावत इस्लामी के माहौल की कुर्बत मिली है। तो जब आप
बाय चॉइस,
जी बाय चॉइस हैं, तो बाय चॉइस क्या कहें, ये तो अल्लाह का करम ही है, तो हम आए। लेकिन जो हम आए ना, तो हम डिफरेंस ज्यादा फील कर सकते हैं, हम डिफरेंस ज्यादा फील कर सकते हैं। तो फीलिंग जो होती है ना एक, वो ही अलग होती है। आज मुझे आपको या जो दावत इस्लामी से वाबस्ता अफराद हैं उनको हम कहते हुए देखते हैं, अल्लाह पाक सलामती नसीब फरमाए, सच्चाई अता फरमाए, कि अल्लाह पाक दावत इस्लामी के माहौल में हमें मौत नसीब फरमाए, ये छोटी बात है। हजारों लाखों अफराद, इस्लामी भाई इस्लामी बहने बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं इस दर पर, हमने जमाने को इसी के लिए ठुकराया है अल्लाह की रहमत से। तो मैं ये मशवरा दूंगा, बजाय सुनने के ना आप आ जाएं, कभी तो आए ना, विजिट कर लें, कोई पकड़ के कैद नहीं करेंगे। आज तशरीफ ले आए यहाँ पे, चाय पीने के लिए तशरीफ ले आए यहाँ पे, कुछ खाने के लिए तशरीफ ले आए, कोई नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले आए, आलमी मदनी मरकज है या आपके सिटी में जो फैजान मदीना है वहां तशरीफ ले आए, तो कहीं आए, देखें कुर्बत, करीब से देखें जरा, दूर से दूर 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 होता है। अब्दुल रज़ाक भाई, दूर से ना बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आ रही होती हैं, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो वो मुख्तलिफ होती हैं। शदीद गर्मी के दिनों में, शदीद गर्मी के दिनों में सराब नजर आ रहा होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता
जी।
तो इसी तरीके से जो कागजी फूल होते हैं, वो दूर से देखें तो वो फूल ही नजर आ रहे होते हैं। ये हमारे पीछे आपको ऐसे ही लग रहा है कि ओरिजिनली जो है वो दरख्त है या डम है, लेकिन ये हकीकतन वो नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। आपको नहीं पता, अगर नहीं पता तो, लेकिन हमें पता है। तो एक फीलिंग जो होती है ना, वो एक अलग चीज होती है। आप करीब आए,
आपने विजिट के हवाले से फरमाया, महरूज भाई, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनली मल्टीनेशनल बड़ी रिकग्नाइज्ड है, उसके सीईओ यहाँ पर तशरीफ लाए आलमी मदी मरकज विजिट के लिए। बड़े शॉर्ट नोटिस पर था विजिट उनका, और आप हमने दीगर शोबाजात का विजिट भी किया। इन द एंड उन्होंने कहा कि हमने इदारे तो बहुत देखे, बड़ी बड़ी कंपनीज देखी, और वर्क स्टेशन बना लेना, क्यूबिकल डिपार्टमेंट्स बना लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे मुनज्जम रखना, डिसिप्लिन रखना
जी,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जाते, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव या जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते, उनके बड़े फंदा पेशानी से मुलाकात करना, बड़े एक स्माइल, हमारा जो अंदाज है अमीर की तरबियत, मुस्कुराते हुए मुसाफा, तो वो उनका ही कहना था कि मुझे ऐसा महसूस होता कि शायद ये मुझे बरसों से जानते हैं। तो ये एक फैक्टर। अच्छा महरूज भाई, आप इस चीज को कैसा देखते हैं कि ये तो खैर माशाल्लाह एक हमारे दीनी माहौल की बहारें हैं
जी,
लेकिन हम जो देखते हैं कि डुअल पर्सनैलिटी, ये भी इस पर भी बहुत डिस्कशन होती है आजकल। मैं इसको बहुत स्पेसिफिक करके बात करूंगा कि अंदाज गुफ्तगू, आप कभी नोट करते हैं कि कुछ लोगों का स्पेसिफिक ग्रुप में अलग होता है, निजी महाफिलों में अलग होता है, फैमिलीज के साथ अलग होता है, तो इससे आप कैसा देखते हैं? क्या ये जो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत अच्छा है, तो क्या वो अच्छे अखलाक के जिम्मे में आएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो वो प्रिटेंड कर रहा है, इसे आप कैसा देखते हैं?
असल में नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आपने क्योंकि सवाल जो है ना वो एक जर्नलाइज करके दिया, और हमारा जो मौजू है अखलाक के हवाले से, तो मैं उसके उस कैफियत में भी देख रहा हूँ। जनरली अगर इसको देखें तो अब्दुल रज़ाक भाई, हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा कजन है, तो अल्टीमेटली हमारा इनसे अंदाजे गुफ्तगू डिफरेंट होगा। एक तो बात ये है, पॉजिटिव ही वे में डिफरेंट होगा, भाई से अच्छा, फिर बड़े भाई से अलग अंदाजे गुफ्तगू, छोटे भाई से
कहीं बेतकल्लुफी कहीं नहीं,
तो वो तो पॉजिटिव समझता हूँ मैं, ये तो ठीक है जी, रियलिटी है ये। लेकिन बाज़ुकात होता यूं है कि मिसाल देता हूँ मैं, बॉस से तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जी सर जी सर जी सर, आप बैठे, आप तशरीफ लेके जाए, मैं आता हूँ सर,
एट योर सर,
हाँ तो ठीक है जी, ये बॉस से तो ठीक है आपका, लेकिन वही आपका मातहत आता है, तो आप उससे कहते हो यहाँ क्यों बैठ गए हो तुम, चलो उठो जाओ यहाँ से, काम करो अपना। मिनटों में आपका जो मिजाज है वो तब्दील हो रहा है। मैंने एक चीज और देखी मार्केट्स में, देखी बात बड़ी ऐसी है कि बहुत सारे शायद अफराद जो है वो उन्होंने फील की हो, तो हम जब मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करनी होती है, कुछ चीज परचेज करनी होती है, तो हम जब जाते हैं तो सेल्स पर्सन जो होता है वो मुख्तलिफ चीजें दिखा
जी।
और सब बड़ी खुश दिली के साथ, इवन हमारी यहाँ लोकल मार्केट में तो कह रहे होते हैं कि जी आप भले नहीं खरीदिएगा, आप परचेज नहीं भी करें, देखें तो, अगर आप परफ्यूम लेने चले गए तो वो लगा सर चेक कर लें, आप सिर्फ चेक तो करें, कपड़े लेने चले गए तो जी वो खोल खोल के शर्ट्स और जो भी चीजें हैं वो दिखा रहे हैं आपको। लेकिन उन्हीं में से चंद चीजें देखें, बाज जगह तो जो है ना उसके एसओपीज बने हुए होते हैं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, एसओपीज बने हुए तो वो फिर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जहां पे एसओपीज नहीं है, हमारी लोकल मार्केट में, मैं वहां की बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप जब कोई चीज जैसे ही रिटर्न करने जाते हैं
जी,
तो बिहेव एकदम चेंज 180 डिग्री से चेंज हो जाता
जी,
है
जी,
कि जी क्यों चेंज कर रहे हैं, यूं तो नहीं किया, यूं तो नहीं किया। वही शख्स है ये जो आपको जो है वो जूस और चाय की और कॉफी की ऑफर कर रहा था, ये आज बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अखलाकियात भी है ना, वो हमारी आर्टिफिशियल है, वो हमारी जात का हिस्सा नहीं बन पाई।
अगर कैसे बने
जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारी जात का हिस्सा नहीं बन पाई। तो अगर हमारी जात का हिस्सा होती ना, हमने उनके, आप जो फरमा रहे कैसे बने और उसकी वजह क्या है, तो हमने अखलाकियात का हकीकी फायदा और मकसद समझा ही नहीं। अखलाक अच्छी आदात वो हैं कि इनकी बरकत से रब राजी हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता अल्लाह पाक किस इबादत पर किस नेकी पर राजी हो जाएगा। और दीन इस्लाम में अखलाक अच्छे करना ये नेकी, ये भलाई का काम। तो आप सोचे एक वो चीज है कि जिसकी बरकत से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, कल कयामत के दिन किसी जानवर पर रहम करना अखलाकियात है ना ये,
जी जी,
इसके ऊपर बख्शिश हो सकती है। तो जब आप इस अंदाज से सोचेंगे ना, तो आपकी ये जो ड्यूल पर्सनैलिटी थी, आपकी दोहरी शख्सियत थी, आप उस ओरे से निकल आएंगे। और मैं आप ही की बात में एक और इसका एक्सपेक्ट भी जो है ना वो बयान कर दूं, एक और जाविया भी, वो ये कि बाज़ औक़ात लोग बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है ना, वहां तो बहुत अच्छे होते हैं, ऑफिस में, अपने जहां पे भी वो इंस्टीट्यूट वगैरह में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेज में, जामियात में पढ़ रहे हैं, वहां पर फ्रेंड सर्कल है, वहां पे बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही वो अपनी एक सेफ जोन में आते हैं, तो गोया के उनकी केचली जिसे कहते हैं ना, बदल जाती।
हाँ हाँ,
आप नबी पाक अली सलातो सलाम को अगर आप देखें, तो नबी करीम अली सलातो सलाम के अखलाक की गवाही जिन अफराद ने दी, आप उन पर गौर करें।
आए, आए, आए।
किन अफराद ने दी? सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जोजा हैं, मुसलमानों की माँ की हैसियत रखती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? जब पूछा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे, तो फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? आपके अखलाक की गवाही दी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पे अव्वलीन वही नाजिल हुई, अव्वलन वही नाजिल हुई, और जो कैफियात हुई, आप हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए, अपनी कैफियात बयान की, तो हजरत खदीजा नबी करीम अलैहिस्सलाम की जोजा, आप फरमाती हैं आपका रब आपको बेआसरा नहीं छोड़ेगा, और फिर आपके अखलाक की तारीफ करती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जो सालों साल सालहा साल आपकी खिदमत में रहे, वो आपके अखलाक की तारीफ करते हैं, गुलाम आपके अखलाक की तारीफ करते हैं। यानी मैं ये वो अफराद बता रहा हूं जिनसे उमूमन बेतकल्लुफी के नाम पर, या यूं कि इनसे क्या हम इज्जत के साथ बात करें, इनके साथ क्या अखलाकियात के साथ बात करें, लोग बद अखलाकी में मुब्तला हो जाते हैं
जी।
तो हमारे प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन है मखलूक में? कोई भी नहीं है मखलूक में। तो आप ही सबसे बड़े हैं, आप सबके सरदार मालिक हैं, तो आप सबसे बड़े होकर हर छोटे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हर छोटे को गोया के मान दे रहे हैं, अखलाकियात से बात कर रहे हैं। तो हम अपना जो भी हमारा ऑरा है उसको देख लें, जो भी हमारा मनसब है उसको देख लें। अगर किसी को अपनी एजुकेशन का जो है ना वो जनाब जूम है वो देख ले, किसी को अपनी मालो दौलत का है, क्योंकि ये चीजें भी अखलाक बिगाड़ती हैं।
बेशक ऐसे ही है।
तो बाज़ों का जोम होता है हमें ना, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी कैफियात होती हैं वो हमारे अखलाक की खराबी का बाइस बन जाती हैं। हम खुद को लोगों से मुमताज समझने लगते हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, दीनी या दुनियावी कोई सी भी हो, चाहे उसमें मनसब का हो, चाहे मालो दौलत का हो, चाहे ताल्लुकात का हो, चाहे बिरादरी का हो। जब ये जोम सवार होता है, तो ये जोम का एक बड़ा बुनियादी नुकसान ये होता है कि इंसान खुद अखलाकियात का दामन छोड़ना शुरू कर देता है। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ना तो उसे पता चलता है, और ना इसकी ये कैफियत होती है कि इसे कोई बता सके, और फिर बहुत बड़ा दुनियावी नुकसान भी होता जी, ही जी। है और आखिरत में फिर अलग नुकसान।
अंग्रेजी में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मी। अगर हम इस चीज को समझना शुरू कर दें कि बजाय इसके कि हम दूसरों पर तनकीद करने लगे या दूसरों को ब्लेम गेम खेलने लगे, से बेहतर ये कि अपनी अपनी तरफ एक नजर डाली जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है मरुज भाई, बस मैं चाहूंगा कि इन दी एंड हम बद अखलाकी के उखरवी جو نقصانات ہیں اسے بھی ہم تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ کہ بروز محشر بظاہر نمازیں عبادات نوافل صدقات اس کا تو بڑا اہتمام ہے لیکن بد اخلاقی یا پھر بظاہر کسی کی ایسے بیہیویئر ہے جسے اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ شاید وہ اس خطرناک کہہ سکتے ہیں کہ چیز کا شکار ہے تو اخروی اسپیکٹ سے ان کے حوالے سے کیا
دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے مختصر بات میں بڑی گہری بات آپ فرما دیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کا انداز یہ ہوتا کہ صحابہ اکرام سے سوال کرتے
ہیں
ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام اچھا دیکھیں سادہ سا سوال ہے جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ایسا نہیں ہے بلکہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نام احوال میں نمازیں روزے زکوٰۃ صدقات لے کر آئے گا
اللہ
لیکن اللہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کو کچھ کیا ہوگا کسی کو کچھ کیا ہوگا اس حدیث پاک میں تفصیل تو یہ جو سارے حقوق تلف کیے ہوں گے بد اخلاقیاں کی ہوں گی ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی اس کے بدلے ہوگا کیا کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کے حق دینے کے لیے اس کی مقبول نیکیاں لو
اللہ اللہ
اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی
اللہ
پھر کیا ہوگا کہ ان کی مظلوموں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے
اللہ
تو پھر یہ شخص مفلس ہوگا کہ آیا تھا نیکیاں لے کر لیکن نیکیاں اس کی دوسروں میں تقسیم ہو گئی جن کی اس نے بد اخلاقی سے یا کسی بھی ذریعے سے حق تلف کیا تھا حق کو نقصان پہنچایا تھا اور اب اس کے نام اعمال میں ان کے گناہ ہوں تو یہ شخص مفلس ہوگا دین اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ دین اسلام ایک طریقہ زندگی ہے تو اس میں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس پہ مسلسل نا بات چیزیں ہوتی ہیں عبدالرزاق بھائی جس پہ مسلسل آپ کو ایفرٹس کرنی ہوتی مسلسل کوشش کرنی ہوتی ہے ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے ہماری مونچھیں ہیں ہمارے ناخن ہیں سمجھ رہے ہمارے بال ان کو کیا کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ اس کی تراش خراش
جی,
اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں نا
جی, بالکل
اگر ہم ایک ہفتے کوشش کریں 15 دن تو ہم ٹھیک ہے جی نیٹ اینڈ کلین رہیں گے داڑھی بھی سنوری ہوئی ہے مونچھیں بھی کتری ہوئی ہیں بال بھی سیٹ ہیں ہمارے ناخن بھی تراشیے ہوئے ہیں تو جب تک ہم اس کو سنوارتے رہیں گے نا تو جب تک یہ سنوری ہے جب تک ہم بال سنوار رہے ہیں جب تک سنور رہے ہیں ڈے بائی ڈے ہمیں کام کرنا ہوگا ریگولر بیسس پہ کرنا ہوگا کنٹینیو کرنا ہوگا اسی میں اخلاق بھی ہے کیونکہ معاشرے کے مختلف چیزوں کی وجہ سے اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو پھر اسے سیٹ کرنا پڑتا
واہ بہت خوبصورت بات کہ معاشرے کی بہت سارے ایسی سچویشنز آپ کے سامنے بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آپ کے اخلاق پر یقیناً بتقاضۂ بشیت یہ چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں گی لیکن اس کی نوک پلک سنوارنا اسے تراشنا اسے خود کہہ سکتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنی اور سیلف ریئلائزیشن کا مرحلہ اگر آپ کا چلتا رہے تو انشاءاللہ الکریم آپ اسے بہتر انداز سے آپ اسے مزید بہترین بنا سکتے ہیں مہروز بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جزاک اللہ خیر آپ نے وقت نکالا اور ماشاءاللہ آپ نے آج کے اس ٹاپک کو یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر جوائن کیا
جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے بلایا اللہ کرے کہ نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس پہ اجر و ثواب پائیں
آمین انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین ہمیشہ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ کنکلوژن لے کر اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں آج کا جو کنکلوژن ہے وہ صرف ایک ہی بات میں ون لائنر سٹیٹمنٹ میں اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اسے اپنا معمول بنائیں اور بالخصوص اگر ہمیں نوجوان دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو مکتبۃ المدینہ کی طرف کی شائع کردہ بہترین کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت یہ انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں موجود ہے اسے ضرور اپنے پاس رکھیں ایون آپ daawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسی خیال کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے مدنی چینل دیکھتے رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یا رب میرے مجھے ایسا شعور